नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के अंतिम तीन चरणों के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर आरक्षण के प्रावधानों के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का कल अंतिम दिन। और राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम, आंधी बारिश और वज्रपात की घटना में दो लोगों की मौत, कई घायल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न गठबंधन और राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए लगातार चुनावी सभाएं, रैली, रोड शो और जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीतामढ़ी में एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि देश और राज्य का विकास एनडीए के विकास मॉडल पर ही निर्भर करता है। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर राज्य को पिछड़ेपन की ओर धकेलने का आरोप लगाया है।
आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठे।
श्री शाह ने मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को उचित सम्मान देने का काम एनडीए सरकार ने ही किया है। श्री शाह ने राजद नेतृत्व पर कर्पूरी ठाकुर के नाम पर सिर्फ सियासत करने का आरोप लगाया।
लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूं। लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री मंत्री रहे, आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलितों और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना चाहती है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि एनडीए सरकार के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है।
इन्होंने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण भी छीनना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। कांग्रेस संविधान बदलकर ये नियम देश भर में लागू करना चाहती है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति यहीं पर नहीं रुकी। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। ये मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों पिछड़ों के आरक्षण की लूट करने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। और मोदी है तो वो लिख के रखें, उनके लिए नामुमकिन है।
इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र के औरंगाबाद जिले में आने वाले दाऊदनगर में जनसंपर्क अभियान चलाया। श्री कुशवाहा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एक मजबूत और जरूरतमंदों की सेवा करने वाली सरकार बनेगी।
प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में कितना अच्छा अच्छा काम किया है। गरीबों के लिए इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री में अनाज का इंतजाम पिछले कई वर्षों से मिल रहा है और इस बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री बना दीजिए, अगला 5 साल तक फ्री में मिलते हैं।
राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार फिर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मधुबनी में राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि एनडीए नेताओं ने जनता के मुद्दे पर चुप्पी बना ली है।
मधुबनी के लिए 10 साल ने किया, आपको बता, सांसद उनका 17 साल से राज्य में सरकार उनका, 10 साल से केंद्र में सरकार उनका, फिर भी बेरोजगारी, फिर भी गरीबी, फिर भी महंगाई, फिर भी पलायन। मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करते। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, पलायन का है, गरीबी का है, महंगाई का है, किसानों का आय दुगुना होना चाहिए, ये है मुद्दा। हमारे मधुबनी में बेड़ी पट्टी में कारखाने लगे, एग्रो बेस इंडस्ट्री लगे, लेकिन 10 साल में एक छोटा काम बड़ा काम कोई नहीं बता सकता। इधर इधर मोदी जी ने बेड़ी पट्टी के लिए क्या किया।
वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी सभा को संबोधित किया। वामपंथी दलों भाकपा, माकपा और भाकपा माले के वरिष्ठ नेता भी एनडी गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का कल आखिरी दिन है। इससे पहले नामांकन पत्रों की जांच में 138 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए हैं। 79 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नालंदा संसदीय क्षेत्र से 29, पटना साहिब से 17, पाटलिपुत्र से 22, आरा से 14, बक्सर से 15, सासाराम से 10, काराकाट से 14 और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से 17 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। इधर अगियाओं विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में सभी 9 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। इस चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। और आइए अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात नालंदा लोकसभा सीट की। नालंदा बिहार के उन 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध नालंदा की पहचान उदार सांस्कृति और धार्मिक परंपराओं की रही है। नालंदा विश्वविद्यालय का बौद्धिक दृष्टिकोण लंबे समय तक एशिया की संस्कृति को गढ़ता रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी नालंदा की विरासत काफी समृद्ध रही है। 1957 से अस्तित्व में आए इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व महान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जैसे कई प्रमुख हस्तियों ने किया है। वर्ष 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में इस सीट से जदयू के कौशलेंद्र कुमार को लगातार जीत मिलती रही है। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत जदयू के खाते में आई नालंदा सीट से पार्टी ने एक बार फिर कौशलेंद्र कुमार को ही मैदान में उतारा है। उनके सामने विपक्षी गठबंधन के भाकपा माले ने संदीप सौरभ को उम्मीदवार बनाया है। संदीप सौरभ पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें 6 पर एनडीए और 1 सीट पर राजद का कब्जा है। अस्थामा, राजगीर, हिलसा, नालंदा और हरनौत सीट पर जदयू के और बिहार शरीफ सीट पर भाजपा के विधायक हैं। वहीं एकमात्र सीट इस्लामपुर पर राजद का कब्जा है। कृषि प्रधान नालंदा लोकसभा क्षेत्र में सुखाड़ की समस्या प्रमुख है। पैमार, गोइठवा, सोइवा और लोकायन समेत अन्य नदियों में पानी का बहाव नहीं के बराबर है, जिस कारण किसानों को सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उद्योग धंधों की कमी के कारण श्रम शक्ति का पलायन क्षेत्र की एक अन्य प्रमुख समस्या है। यदि उम्मीदवार अपने 15 वर्षों के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों तथा राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर आम लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं भाकपा माले उम्मीदवार महंगाई और बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों के आधार पर लोगों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र के 22 लाख से अधिक मतदाता चौथी बार जदयू उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार को लोकसभा भेजते हैं या फिर एक नए चेहरे भाकपा माले के संदीप सौरभ पर भरोसा जताते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIRNews Patna पर भी सुने जा सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज भोजपुर के समाहरणालय कक्ष में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान आरा संसदीय क्षेत्र में सातवें चरण के लोकसभा चुनाव और अगियांव विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से किए जा रहे जागरूकता अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे सुरक्षा जांच अभियान के दौरान वंदे भारत ट्रेन से एक यात्री को 67,40,000 रूपये नकद के साथ हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उसने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी और न ही कोई वैध कागजात दिखाए हैं। जहानाबाद जिले में कवि सम्मेलन का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। स्थानीय कोऑपरेटिव बैंक कंपाउंड में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिला चुनाव आइकन अमित कुमार और अजीत कुमार ने किया। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के कुर्णी में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता असितनाथ तिवारी, सत्यम दुबे समेत कई नेता आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बांका, मुंगेर, जमुई, कटिहार समेत राज्य के दक्षिण पूर्व भागों में आज दोपहर बाद अचानक आए आंधी बारिश और वज्रपात की घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बांका जिले के बौंसी प्रखंड अंतर्गत असनाहा गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। वहीं जिले के विभिन्न भागों में पेड़ गिरने के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इधर मुंगेर जिले के खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत दहियार गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य के 19 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर उष्ण दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण नमी युक्त हवा प्रदेश के दक्षिण पूर्व भागों में प्रवेश कर रही है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है।
उत्तर पश्चिमी हवा बिहार में आ रही है। एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण बिहार और आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जिस कारण एक दो जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है।
राज्य सरकार ने अवैध बालू खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वाहनों में विशिष्ट पहचान लगाने के निर्देश दिए हैं। खनन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर GPS लगे वाहनों पर चारों तरफ 20 इंच चौड़ी लाल रंग की पट्टी लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही इन वाहनों के चारों तरफ खनन वाहन निबंधन संख्या अंकित करना भी अनिवार्य होगा। ये व्यवस्था इसी वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुजफ्फरपुर में मालीघाट चौक स्थित पूर्व पार्षद विजय झा के आवास सहित 8 ठिकानों पर आज आयकर विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की। विजय झा वार्ड नंबर 41 के पार्षद सीमा झा के पति हैं। दरभंगा की एक स्थानीय अदालत ने अपहरण के मामले में 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के अंतिम 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर आरक्षण के प्रावधानों के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का कल अंतिम दिन। और राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम, आंधी बारिश और वज्रपात की घटना में 2 लोगों की मौत, कई घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।